ईशान अंतर्मुखी स्वभाव का होने के कारण हर बात अपने दिल की गहराइयों में छुपाकर रखता था, ताकि किसी को उसकी भावनाओं, दर्द का अंदाज़ा ना हो। उसने इतने सालों में पहली बार किसी को ये बातें बताई थीं। आज अपने मन में दबे हर राज पर से पर्दा उठाया था, हर दर्द को कशिश के सामने जाहिर कर गया था। सब बताते हुए ईशान की आंखें नम हो गई थीं। कई बार गला भर आया था, शब्दों में भारीपन झलकने लगा था, आवाज़ भारी हो गई थी। उसकी निगाहें अभी गंगा मैया की गहराइयों की ताह पाने की नाकाम सी कोशिश कर रही थीं। बिल्कुल उन्हीं लहरों जैसे ईशान की सुनी वीरान आंखों में असीम दर्द आंसुओं के रूप में कैद हिलोरे मार रहा था। कशिश की आंखें भी उसकी बातें सुनकर नम हो गई थीं। उसने किसी तरह खुद को संभाला और ईशान की हथेली पर अपनी हथेली रखते हुए बोली, आप सबसे नाराज हैं कि उन्होंने आपके पापा को अकेला छोड़ दिया, इसीलिए किसी से बात नहीं करते, उनके साथ खाना नहीं खाते। कशिश का सवाल सुनकर ईशान ने उन आंसुओं के अस्तित्व को खत्म कर दिया। चेहरा एक बार फिर एकदम सपाट और भावहीन हो गया। दिल से एक दर्द भरी आह निकली और लरसते होंठों ने खामोशी तोड़ी। नहीं, मैं किसी से नाराज नहीं, क्योंकि जो भी हुआ उसकी वजह वो सब नहीं, बल्कि वो औरत है जो रिश्ते में मेरी माँ है। अगर उन्हें पैसे, दौलत, शोहरत, ऐशो आराम भरी जिंदगी की इतनी ही लालसा थी, इतनी ही चाहत थी रईस बनने की, तो पापा के बारे में सब जानते हुए उन्हें उनसे प्यार नहीं करना चाहिए था, नहीं करनी थी पापा से शादी। उनके दो पल के प्यार और महत्वाकांक्षाओं, ऐशो आराम की जिंदगी बिताने की चाहत ने पापा की पूरी जिंदगी तबाह कर दी। एक हंसते खेलते संयुक्त खुशहाल परिवार को बिखेर कर रख दिया। मेरी और दीदी की जिंदगी मुश्किलों से भर दी। उनके स्वार्थी प्यार, धोखे और लालच ने सब बर्बाद कर दिया। असली गुनहगार वो है, पापा की, मेरी, दीदी की और पूरे परिवार की। इसीलिए बाकियों से कोई शिकायत नहीं मुझे। बस एक सवाल है उनके लिए कि पापा को उनके किस गुनाह की सजा दी गई थी? क्या प्यार करना इतना बड़ा गुनाह था? क्या मम्मी को खुद से ज्यादा अहमियत देना उनका दोष था? क्या उन्हें खुश रखने की कोशिश करना, उन पर बेकार की पाबंदियां ना लगाना उनकी गलती थी जिसके कारण इतनी बड़ी सजा दी गई उन्हें? जो इंसान अपने प्यार से मिले धोखे से पहले ही टूटा हुआ था, जिसका इतने मोहब्बत से बनाया, इतने जतन से संजोकर रखा रिश्ता एक झटके में बिखर गया था, जिसके बच्चों से उनकी माँ का आंचल, ममता, दुलार छिन गया था, वो तो उस वक्त खुद टूटा हुआ था, दर्द में था। ज़रूरत थी उसे अपनों के साथ प्यार और सहारे की, पर उस मुश्किल वक्त में इस समाज और उनके खुद के परिवार ने अपने रूखे व्यवहार और बातों के तीखे बाणों से घायल कर मृत्युशैया पर सुला दिया उन्हें। अगर तब उनके परिवार ने उनका साथ दिया होता तो शायद आज वो जिंदा होते, हमारे साथ होते। इंसान का गला भराया तो वो खामोश हो गया। कशिश उसके शब्दों में घुले दर्द, बेबसी, नाराजगी जैसे भावों को महसूस कर पा रही थी। अनायास ही ईशान की हथेली पर उसकी पकड़ कस गई। हमेशा अपनी जज्बातों को खुद में छुपाए रखने वाले ईशान ने जल्दी ही खुद को संभाला और दर्द भरी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बोला, अच्छा हुआ पापा चले गए, ये दुनिया, ये लोग उनके काबिल नहीं है। यहाँ उन्हें सिर्फ दुख, दर्द, तिरस्कार, अपमान, तकलीफ और जिल्लत ही मिली। वो महादेव के पास सुकून से रहेंगे। कशिश समझ ही नहीं सकी कि क्या कहे इस बात पर। हमेशा बकबक करने वाली कशिश पहली बार बोलने के लिए शब्द नहीं ढूंढ पा रही थी। ईशान ने भी आगे कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद कशिश ने ही बात शुरू की, आप जमीन पर बैठकर खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि वही वो जगह है जहां बैठकर पापा खाना खाया करते थे। उनसे सबके साथ बैठकर खाना खाने का अधिकार छीन लिया गया था, तो पापा वहीं बैठकर खुद भी खाते थे और मुझे और दीदी को भी खिलाते थे। वो जगह मुझे पापा की मौजूदगी का एहसास करवाती है। फिर जहां बैठने का हक पापा से बिना किसी दोष के छीन लिया गया, मैं कभी उस जगह नहीं बैठ सकता। मिश्रा जी, एक आखिरी सवाल और पूछूं? पूछो, ईशान ने सामने देखते हुए हामी भर दी। कशिश थोड़ा हिचकिचाई, फिर धीमी आवाज में बोली, आप जानते हैं कि आपकी मम्मी कहाँ है? कशिश का सवाल सुनते ही ईशान के चेहरे के भाव बदल गए और कशिश के चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। उसे लगा था कि ईशान इस सवाल पर भड़क जाएगा, पर उसकी उम्मीद के विपरीत इस बार भी ईशान के लब उसके जवाब के लिए खुल गए। नहीं, और मुझे जानना भी नहीं। बस जहां भी हूं कभी लौट कर हमारी जिंदगी में ना आए, कभी मेरे सामने आकर मेरे पुराने जख्मों को ना कुरे दे, वरना गुस्से में मैं क्या कर जाऊंगा मैं खुद नहीं जानता। ईशान ने सामान्य रहने की कोशिश तो बहुत की, पर उसकी माँ के जिक्र से ही उसे सब याद आ गया। उनके कारण उनकी जिंदगियां आजाब बन गई थीं। शिकवे शिकायतें वक्त और हालातों की मार खाकर गुस्से और नफरत में बदल चुकी थीं। वही नफरत इस वक्त उसकी आंखों में झलक रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके गुस्से को भांपते हुए कशिश ने साइड से उसे हटाते हुए बड़े ही प्यार से कहा, अच्छा अच्छा, इतना गुस्सा नहीं करो, वरना गुस्से में महादेव का रौद्र रूप धारण कर लोगे और सबसे पहले मुझे ही अपनी क्रोधाग्नि से भस्म करोगे, और मैं अभी मरना नहीं चाहती। एक बार फिर कशिश की बेसर पैर बातें शुरू हो गई थी। उसकी उल्टी सीधी बातों का असर ये हुआ कि ईशान का गुस्सा कुछ शांत हो गया। कशिश उसका ध्यान भटकाने में कुछ हद तक कामयाब रही थी। ईशान ने गहरी सांस छोड़ी और कशिश को खुद से दूर करते हुए बोला, मैं ठीक हूं। कशिश उससे जरा पीछे हटकर बैठ गई। कुछ पल उनके बीच गहरी खामोशी छाई रही। फिर कशिश के दिमाग में अचानक ही कुछ आया और उसने ईशान की बांह पकड़कर हिलाना शुरू कर दिया। मिश्रा जी, एक सवाल और आया मेरे मन में, पूछ लूं? उसकी यूं अचानक पकड़कर हिलाने से ईशान चौंक गया। फिर कशिश की बांह अपनी बांह पर से हटाते हुए बोला, पूछ लो, पर जरा दूर रहकर बात करो, ये चिपकना विपकना जरा भी पसंद नहीं है मुझे। उसकी बात सुनकर कशिश एकदम अच्छी बच्ची बनकर पीछे हटकर बैठ गई और लबों पर सौम्य सी मुस्कान सजाते हुए बोली, मिश्रा जी, अभी तो आप बहुत खड़ूस हैं, क्या बचपन में भी आप ऐसे ही थे? कशिश का सवाल सुनकर ईशान आंखें छोटी छोटी करके उसे गुस्से से घूरने लगा। कशिश ने उसका गुस्सा देखकर अपनी बत्ती सी चमका दी, फिर बात बदलते हुए बोली, उप्स, गलती से गलत सवाल कर लिया मैंने। मैं तो ये पूछने वाली थी कि प्यार से जो छुआछूत है आपको, अगर कभी ऐसा हुआ कि आपको किसी से प्यार हो गया, तब क्या करेंगे आप? क्या प्यार से आपकी ये नाराजगी कभी दूर नहीं होगी? क्या आपने इस नाराजगी की वजह से अपनी मोहब्बत को खुद से दूर कर देंगे, अपने प्यार को ठुकरा देंगे, या अपनी नाराजगी को भुलाकर अपने प्यार को एक्सेप्ट करेंगे और उस इंसान को अपने दिल के साथ साथ अपनी जिंदगी में भी जगह दे देंगे? कशिश का ये सवाल सुनकर ईशान कुछ पल खामोशी से कशिश को देखता रहा, जो बड़ी ही उत्सुकता से अपने सवाल का जवाब जानने का इंतजार कर रही थी। फिर गहरी निगाहों से उसे देखते हुए गंभीरता से बोला, अगर यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम क्या जवाब दोगी? मेरे पास तो वाजिब वजह है प्यार और शादी से दूर रहने की, पर तुम्हारे कारण वैलिड नहीं है। तुम चंद मर्दों की वजह से पूरी मर्तजात को गलत नहीं ठहरा सकती। दुनिया में हर पति अपनी पत्नी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, हर मर्द अपनी पत्नी को मारता पीटता भी नहीं, हर मर्द पति बनकर अपनी पत्नी के वजूद को मिटाकर उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं करता। दुनिया में कुछ बुरे मर्द हैं तो कुछ अच्छे आदमी भी हैं। जैसे मेरे पापा को ही ले लो, उन्होंने मम्मी से सच्ची मोहब्बत की थी, हमेशा उनकी खुशी का ध्यान रखा, कभी खुद को उन पर थोपने की कोशिश नहीं की। उन्हें रिश्ते की बेड़ियों में बांधकर रखने की जगह पूरी आजादी थी अपनी जिंदगी खुलकर अपने हिसाब से जीने की। उनके इतने बड़े धोखे के बाद भी कभी उनके लिए गलत शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। हाथ उठाना तो बहुत दूर की बात है। ऐसे में तुम्हारा शादी से दूर भागना, पूरी मर्द जात को क्रूर, अन्यायी और संगदिल कहना तो गलत होगा।
फिर तो तुम भी गलत हो, क्योंकि अगर दुनिया में तुम्हारी मम्मी जैसी औरतें हैं तो मेरी मम्मी और दीदी जैसी औरतें भी हैं, जो एक बार रिश्ता जुड़ जाए तो अपना सब कुछ गंवाकर भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ उस रिश्ते को निभाती हैं। चाहे वो रिश्ता कितना ही दर्द क्यों ना दे, पर कभी उसे तोड़ने का ख्याल भी अपने मन में नहीं लाती। जिससे शादी के रिश्ते से जुड़ती हैं उन पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती हैं। हो सकता है तुम्हारे लिए भी महादेव ने ऐसी ही किसी लड़की को चुना हो, जो अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ तुम्हारी बनकर रहे, तुम्हारे बिखरे परिवार को संभाल ले, तुम्हें अतीत के दर्द भरी यादों से बाहर निकाल लाए, अपने प्यार से तुम्हारे हर तकलीफ को मिटा दे, जिसका साथ तुम्हारी इस कभी ना खत्म होने वाली तन्हाई का अंत कर दे। अगर ऐसा हुआ तो तुम एक्सेप्ट कर लोगे उसे?